एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे समय में थोड़ा सा पीछे, करीब 1500 साल पहले, और बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसके सवाल आप यकीन मानिए आज भी उतने ही ताजे लगते हैं।
बिल्कुल, मैं हूं आपका दूसरा मेजबान और हम बात कर रहे हैं एनीशियस मैनिलस सेवेरिनस बूथियस की द कॉन्सोलेशन ऑफ फिलॉसफी, हिंदी में कहें तो तत्वज्ञान का आश्वासन, या शायद फिलॉसफी से मिली सांत्वना।
हाँ, और सोचिए जरा, एक इंसान जो कामयाबी के बिल्कुल शिखर पर था, अचानक सब कुछ छिन जाता है, जेल हो जाती है, मौत की सजा मिलती है, और ऐसी हालत में वो जेल में बैठकर लिखता है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है।
यही यही तो इस किताब का दिल है कि वो क्या लिखता है उस वक्त, और ये किताब सीधे उन सवालों से टकराती है जो हम सब शायद कभी ना कभी सोचते ही हैं, जैसे जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है ना, जब दुनिया बड़ी नाइंसाफ सी लगती है, तब मन को शांति कैसे मिले।
बिल्कुल, और क्या हमारी खुशी बाहरी चीजों पर टिकी है, मतलब पैसा, शोहरत, सेहत?
हाँ, या फिर सच्ची खुशी का रास्ता कहीं और है, शायद हमारे अंदर ही।
सही कहा, ये सवाल सदियों पुराने हैं, पर आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं।
तो ये बोएथियस थी कौन, मतलब क्या खास था इनमें?
हाँ, ये जानना जरूरी है। बोएथियस कोई ऐरे गैरे लेखक नहीं थे, वो रोमन साम्राज्य के बिल्कुल आखिरी दौर के एक बहुत बड़े, क्या कहते हैं, दिग्गज थे।
बौद्धिक जीवी, दार्शनिक, ईश्वर विज्ञानी, और हाँ, एक बड़े राजनेता भी।
अच्छा, मतलब कई चीजें एक साथ।
हाँ बिल्कुल, परिवार बहुत ऊंचा था, रसूख वाला, और उस जमाने के हिसाब से जबरदस्त पढ़े लिखे, लैटिन ग्रीक दोनों जानते थे, जो तब बहुत कम लोग जानते थे, और शायद यही उनकी खासियत थी, है ना, कि उनमें दुनियादारी का तजुर्बा भी था और गहरी फिलोसफिकल समझ भी। ये कॉम्बिनेशन कम मिलता है।
सही कहा, वो रोम के सबसे ऊंचे ओहदों पर रहे, कौंसुल बने, फिर मास्टर ऑफ ऑफिसेस, ये समझिए कि राजा का सबसे खास सलाहकार या मंत्री।
बाप रे, तो मतलब सत्ता, पैसा, इज्जत, सब कुछ बहुत करीब से देखा होगा उन्होंने।
हाँ बिल्कुल, भोगा था, लेकिन साथ ही उनका एक बहुत बड़ा सपना था।
सपना क्या?
वो चाहते थे कि प्लेटो और अरस्तु जैसे जो महान ग्रीक दार्शनिक थे, उनके सारे काम लैटिन में ट्रांसलेट करें, ताकि पश्चिमी दुनिया जो ग्रीक भूल रही थी, वो इस ज्ञान को खो ना दे।
अरे वाह, ये तो बड़ा काम था।
बहुत बड़ा। उन्होंने अरस्तु के लॉजिक, मतलब तर्कशास्त्र पर तो बहुत काम किया भी, इसीलिए उन्हें कहते हैं रोमनों में आखिरी और स्कोलास्टिक्स में पहले।
स्कोलास्टिक्स, वो मध्ययुगीन दर्शन?
हाँ वही, मतलब वो जैसे पुराने जमाने और आने वाले मिडिल एज के बीच एक पुल जैसे थे।
और फिर अचानक सब बदल गया?
हाँ बिल्कुल, जैसे किसी कहानी में होता है। राजा थियोडोरिक, जिसके वो इतने वफादार मंत्री थे, उसी ने उन पर देशद्रोह का इल्जाम लगा दिया।
लेकिन क्यों, कोई साजिश?
माना तो यही जाता है, दरबार की साजिशें, और नतीजा, पद गया, रुतबा गया, सारी जायदाद छीन ली गई और उन्हें पाविया शहर की जेल में बंद कर दिया गया, और कुछ वक्त बाद वहीं मार डाला गया बेरहमी से।
तो ये किताब उसी जेल की कोठरी से निकली है?
हाँ, ये कोई ठंडे दिमाग से लिखी फिलॉसफी नहीं है, ये वो सच हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक आग में तपा कर निकाले।
इसीलिए शायद इन बातों में इतना वजन है।
बिल्कुल, ये अनुभव उन्हें वो अधिकार देता है जो शायद किसी और के पास ना हो।
तो आखिर ये किताब है क्या, मतलब किस बारे में है? नाम तो है कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी।
हाँ, तो जैसा नाम है, ये सांत्वना या दिलासा देने के बारे में है, पर ये दिलासा और रोने धोने से नहीं, बल्कि फिलॉसफी, मतलब तत्वज्ञान और तर्क से आता है।
अच्छा, कैसे?
किताब असल में एक बातचीत है, एक डायलॉग। एक तरफ तो खुद बोथियस हैं, जेल में बंद, अपनी किस्मत पर रो रहे हैं बिल्कुल टूटे हुए, और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी, बड़ी आलीशान सी औरत आती हैं, लेडी फिलोसफी, मतलब ज्ञान और विवेक का जीता जागता रूप।
दिलचस्प, और लिखने का तरीका भी शायद कुछ अलग है।
हाँ, वो भी खास है, प्रोसिमेट्रम कहते हैं। इसमें गद्य यानी कहानी जैसा हिस्सा और पद्य यानी कविता, दोनों बारी बारी से आते हैं।
तो गद्य में शायद तर्क होता होगा और कविता में भावनाएं?
बिल्कुल सही, गद्य में बहस चलती है, तर्क दिए जाते हैं, और कविता में उन्हीं आइडियाज को एक इमोशनल गहराई मिलती है।
और मकसद, किताब का लक्ष्य क्या है?
मकसद साफ है, ये एक तरह की दिमागी और रूहानी दवा है, थेरेपी है। लेडी फिलॉसफी बोथियस को और असल में पाठक को भी दुख, उलझन, खुद पर तरस खाने की हालत से निकालकर साफ सोच और गहरी शांति की तरफ ले जाती हैं।
तो शुरुआत कैसे होती है? निराशा से।
हाँ बिल्कुल, गहरी निराशा से। बुथियस अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, तभी फिलॉसफी प्रकट होती है और आती कहती है, अरे तुम तो बीमार हो, और ये बीमारी बाहर की नहीं अंदर की है।
अंदर की बीमारी मतलब
तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम भूल गए हो कि तुम असल में कौन हो, इंसान का असली स्वभाव क्या है, दुनिया कैसे चलती है। तुमने अपनी खुशी उन चीजों से जोड़ ली जो किस्मत देती और छीनती है, पैसा, पद, शोहरत, और जब वो चली गई तो लगा सब लुट गया।
ये तो बड़ी गहरी बात कह दी उन्होंने शुरू में ही।
यहीं से इलाज शुरू होता है। फिलॉसफी बड़े प्यार से पर मजबूत तर्कों से बोथियस की गलतफहमियों को एक एक करके दूर करती हैं।
वो दिखाती हैं कि पैसा, ताकत, रुतबा, नाम, ये सब क्यों झूठे सुख हैं, क्यों ये हमें कभी पूरा संतोष नहीं दे सकते।
जैसे
क्या तर्क देती हैं वो?
जैसे पैसा चिंता लाता है, ताकत अक्सर इंसान को बिगाड़ देती है, रुतबा तो दूसरों की राय पे टिका है, वो कभी भी बदल सकती है, और नाम वो तो पल भर का है।
सही बात है, तो फिर सच्चा सुख क्या है?
हाँ, फिर वो बताती हैं कि सच्चा सुख क्या है। एक ऐसी हालत जो पूरी हो, अपने आप में मुकम्मल हो, जिसे किसी बाहरी चीज की जरूरत ना हो। और ये चीज सिर्फ परम अच्छाई, सुप्रीम गुड हो सकती है, और वो परम अच्छाई आखिरकार ईश्वर ही है।
ओह, तो ये ईश्वर तक ले जाती है बात।
हाँ, और फिर किताब और भी गहरे सवालों में उतरती है, जैसे दुनिया में बुराई क्यों है, अच्छे लोग दुख क्यों पाते हैं।
ये तो बहुत बड़ा सवाल है,
है ना? और फिर वो आखिरी सवाल, क्या भगवान के सब कुछ जानने और हमारी अपनी मर्जी से काम करने में कोई टकराव है?
मतलब ये वाकई हर सोचने वाले इंसान के लिए जरूरी किताब लगती है।
बिल्कुल।
अच्छा, तो थोड़ा और अंदर चलते हैं। किताब 5 हिस्सों में आपने बताया, तो पहले हिस्से में क्या होता है?
पहला हिस्सा है दुख का निदान, डायग्नोसिस। जैसा हमने कहा, बोथियस दुख भरे गीत गा रहे हैं, फिलॉसफी आती हैं और कहती हैं, भाई रोना बंद करो, सोचना शुरू करो।
दवा कड़वी है।
हाँ, वो कहती हैं, तुम्हारी असली बीमारी ये है कि तुम भूल गए हो कि तुम एक सोचने वाला विवेकशील प्राणी हो, और दुनिया कोई अंधेर नगरी नहीं, एक व्यवस्थित रचना है। वो जो कहती है ना, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो, ये शायद किताब का सबसे सबसे बुनियादी सबक है।
और दूसरे हिस्से में?
दूसरे में वो बात करती हैं भाग्य की चंचलता की, फॉर्चून की। वो किस्मत को एक देवी की तरह दिखाती हैं, जिसका एक पहिया है।
पहिया मतलब?
मतलब वो हमेशा घूमता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, आज राजा कल रंक। वो कहती हैं, किस्मत का स्वभाव ही बदलना, उससे मेरी चीजें, पैसा, पद, ताकत तुम्हारी अपनी थोड़ी थी, वो तो किस्मत ने उधार दी थी।
अच्छा,
उधार।
हाँ।
और जब उसने वापस ले ली तो रोना क्यों, ये तो उसका खेल है। फिर वो तर्क देती हैं कि ये चीजें वैसे भी सच्ची खुशी नहीं देती, बल्कि वो एक बड़ी चौंकाने वाली बात कहती हैं।
क्या?
कि मुसीबत अक्सर खुशकिस्मती से बेहतर होती है।
हैं? ये कैसे?
क्योंकि मुसीबत हमें सच्चाई दिखाती है, हमारे असली दोस्त कौन हैं ये बताती है, हमें अंदर झांकने पर मजबूर करती है, जबकि खुशकिस्मती हमें अंधा कर सकती है।
वाओ, ये तो बिल्कुल उल्टा नजरिया है, हम तो हमेशा खुशकिस्मती जाते हैं।
हाँ, पर वो ये सोचने पर मजबूर करती हैं।
तो अगर ये बाहरी चीजें सुख नहीं है, तो फिर तीसरा हिस्सा बताता होगा कि सच्चा सुख क्या है।
बिल्कुल, यही तीसरे हिस्से का सवाल है। फिलॉसफी कहती है कि हर इंसान अपनी फितरत से सुख चाहता है, एक ऐसा सुख जो पूरा हो, टिकाऊ हो, जिसे कोई छीन न सके।
ठीक है,
बाहरी चीजें ऐसी हैं नहीं, तो फिर क्या है? वो तर्क करती हैं कि सिर्फ परम अच्छाई, समम बोनम, ही ऐसी हो सकती है, और ये परम अच्छाई ईश्वर के सिवा कुछ और नहीं।
तो असली खुशी पाना यानी ईश्वर को पाना।
हाँ, और रास्ता समझदारी और नेकी का जीवन, वर्चू।
लेकिन यहाँ वो मुश्किल सवाल आता है जिसका जिक्र आपने किया था, बुराई की समस्या।
हाँ, चौथे हिस्से का केंद्र यही है। अगर भगवान अच्छा और ताकतवर है, तो फिर बुरे लोग मजे क्यों करते हैं और अच्छे लोग दुख क्यों उठाते हैं?
ये सवाल तो हिला देता है। क्या जवाब देती है फिलॉसफी?
जवाब बहुत गहरा है। पहली बात वो कहती हैं, बुराई असल में कमजोरी है, ताकत नहीं।
कमजोरी? कैसे?
क्योंकि बुरा आदमी अपने असली लक्ष्य यानी सच्ची खुशी या अच्छाई तक पहुंच ही नहीं पाता, वो भटक जाता है। असली ताकत तो नेकी में है, जो मंजिल तक ले जाती है।
अच्छा, ये अलग सोच है।
दूसरी बात, बुराई करना ही अपने आप में सजा है, ये इंसान की आत्मा को गिराता है, उसे उसकी असली पहचान से, परम अच्छाई से दूर कर देता है।
मतलब बाहरी सजा मिले न मिले, अंदरूनी सजा तो मिल ही रही है।
बिल्कुल, और तीसरी बात, वो प्रोविडेंस और फेट में फर्क करती हैं।
प्रोविडेंस ऑफ फेट, ये क्या है?
प्रोविडेंस है भगवान की वो बड़ी अनदेखी हमेशा न्यायपूर्ण योजना, और फेट है उस योजना का समय के साथ हमारे सामने आना। तो जिसे हम किस्मत का खेल या नाइंसाफी समझते हैं, वो असल में उस बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। हर मुसीबत का कोई ना कोई मकसद होता है, या तो नेकी को परखना, या भटके हुए को सुधारना, या बुरे कर्मों का फल देना।
बाप रे, ये तो बहुत बहुत बड़ी तस्वीर दिखा दी उन्होंने। मानना आसान नहीं, पर सोचने पे मजबूर करता है।
हाँ, ये दिमाग को खींचता है।
और पांचवा हिस्सा, वो स्वतंत्र इच्छा वाला?
हाँ, स्वतंत्र इच्छा और ईश्वरीय ज्ञान, ये शायद सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाला है। पहली वही, अगर भगवान सब जानता है कि क्या होगा, तो क्या हम आजाद हैं? अगर उसे पता है मैं कल क्या करूंगा, तो क्या मैं कुछ और चुन सकता हूँ?
हाँ, अगर नहीं चुन सकता तो फिर मेरी क्या गलती?
बिल्कुल, ये क्लासिक प्रॉब्लम है। फिलॉसफी का जवाब बहुत बहुत अनोखा है।
बताइए बताइए।
वो कहती हैं, हमारी दिक्कत ये है कि हम भगवान के जानने को अपने जानने जैसा समझते हैं समय के अंदर, पर भगवान समय से परे है। वो चीजों को पहले से नहीं जानता, वो सारे समय को, भूत, वर्तमान, भविष्य, एक साथ, एक हमेशा वाले अभी, इटर्नल प्रेजेंट में देखता है।
हमेशा वाला अभी? ये कैसे मुमकिन है?
मुश्किल है समझना, पर वो उदाहरण देती हैं, जैसे अगर मैं तुम्हें अभी चलते हुए देख रहा हूँ, तो मेरा देखना तुम्हें चलने पर मजबूर तो नहीं कर रहा है ना?
नहीं, मैं अपनी मर्जी से चल रही हूँ।
बिल्कुल, तुम अपनी मर्जी से चल रहे हो, मैं बस देख रहा हूँ। वैसे ही भगवान हमारे कामों को उनके होते हुए देखता है, एक शाश्वत नजरिए से, बिना उन्हें तय किए।
ओह, तो मतलब उसका जानना हमें बांधता नहीं है?
नहीं, इसलिए हमारी इच्छा आजाद है, हम अपने चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं, और इसीलिए हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार भी हैं।
वाह, ये तो कमाल का समाधान है।
हाँ, और किताब इसी नसीहत पर खत्म होती है कि हमें नेकी की राह पर चलना चाहिए, ये जानते हुए कि एक सब कुछ देखने वाला जज हमें देख रहा है।
तो इस पूरी गहरी बातचीत से कुछ मोटी मोटी बातें क्या निकलती हैं? मतलब की टेकअवेज क्या है?
मेरे ख्याल में सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है अंदरूनी बनाम बाहरी चीजों का महत्व, कि असली खुशी, मन की शांति, वो अंदर से आती है, हमारी समाज, हमारी नेकी, हमारे नजरिए से।
हाँ, वो पैसा, पद, सेहत, शोहरत, ये सब तो बाहरी है, आज है कल नहीं, किस्मत पर टिके हैं।
बिल्कुल, और आज के जमाने में जहाँ सब कुछ बाहरी देखा जाता है ना,
सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले, कितनी बड़ी गाड़ी है,
ये बात कितनी अहम है।
बहुत ज्यादा। और दूसरी बात?
दूसरा बड़ा आइडिया है तकलीफ या पीड़ा का सीखने वाला पहलू, एजुकेशनल वैल्यू ऑफ सफरिंग।
मतलब दुख से सीखना?
हाँ, बोथियस ये नहीं कह रहे कि दुख अच्छा है, पर यह कि दुख से सीखा जा सकता है, मुश्किल वक्त हमें उन वहमों से जगा सकता है जिनमें हम जी रहे होते हैं।
अपनी अंदरूनी ताकत पहचानने का मौका देता है, जैसे कहते ना, एडवर्सिटी बिल्ड्स कैरेक्टर।
सही काम।
जैसे ऑफिस में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट आ जाए,
या घर में कोई परेशानी, हमें सब्र आ जाता है, या हम सीखते हैं कि कौन अपना है, ये आसान वक्त में शायद ना सीख पाते।
हाँ, ये तो है। तीसरा थीम क्या लगता है आपको?
तीसरा है वो प्रोविडेंस, यानी एक बड़ी योजना का भरोसा, ये मानना कि जो चीजें हमें अभी बेमतलब या नाइंसाफी लग रही हैं, वो शायद किसी बड़ी, अनदेखी पर अच्छी योजना का हिस्सा हो।
ये थोड़ा मुश्किल है मानना, खासकर जब बुरा हो रहा हो।
है, ये विश्वास की बात ज्यादा है, पर ये हमें अपनी समझ की सीमाएं दिखाता है, और शायद मुश्किल वक्त में थोड़ा सब्र और एक बड़ा पर्सपेक्टिव रखने में मदद करता है, ये सोचना कि शायद इसका कोई मतलब है जो मुझे अभी नहीं दिख रहा।
और चौथी बात?
चौथी बात जो मुझे बहुत पसंद आई, वो है फिलोसॉफिकल सोच की बदलने वाली ताकत, ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ फिलॉसफी। ये किताब दिखाती है कि फिलॉसफी सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये आत्मा के लिए दवा है, मेडिसिन फॉर द सोल।
वाह, आत्मा के लिए दवा।
हाँ, सही तरीके से सोचना, दुनिया को और खुद को सही नजरिए से देखना, हमें सच में दुख से निकालकर शांति तक ले जा सकता है, मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत दे सकता है।
इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो एकदम चिपक जाती हैं दिमाग में, जैसे वो एक जगह कहती हैं फिलॉसफी।
हाँ, कहीं है, कौन सी याद आ रही है आपको?
वो वाली, कोई भी चीज तब तक दुखद नहीं है जब तक आप उसे ऐसा न समझें, और दूसरी ओर कोई चीज तब तक खुशी नहीं देती जब तक आप उससे संतुष्ट न हो।
हाँ, ये बहुत पावरफुल है, मतलब हमारा अनुभव, हमारी फीलिंग काफी हद तक हमारे अपने नजरिए पर, हमारी सोच पर निर्भर करती है।
बिल्कुल, हालात चाहे जैसे हों, हम उन्हें लेते कैसे हैं ये हमारे हाथ में है, ये कितनी बड़ी आजादी है।
सही कहा, और एक और है जो इसी से मिलती जुलती है, यदि तुम स्वयं के स्वामी हो तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जिसे तुम कभी खोना नहीं चाहोगे और जिसे भाग्य कभी छीन नहीं सकता।
स्वयं के स्वामी, मतलब
अगर तुम्हारी अपनी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारे उसूल तुम्हारे काबू में हैं, तो यही तुम्हारी असली दौलत है। ये वो चीज है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए।
असली संपत्ति अंदर है।
हाँ, और वो जो फिलॉसफी शुरू में ही कहती है बोएथियस को, जो शायद हम सब के लिए है, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो।
हाँ, ये तो जड़ है। शायद हमारी बहुत सी तकलीफें इसीलिए हैं कि हम अपनी असली पहचान एक सोचने वाला नैतिक प्राणी के तौर पर भूल जाते हैं, और खुद को अपनी नौकरी, अपने बैंक बैलेंस, अपनी सोशल इमेज इनसे पहचानने लगते हैं। और जब वो चीजें हिलती हैं तो लगता है हम ही खत्म हो गए।
बिल्कुल।
तो सवाल ये है कि ये 1500 साल पुरानी बातें आज हमारी जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं? मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। पहली चीज तो ये हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बना सकती हैं।
इमोशनल रेजिलियंस।
जब जिंदगी में कुछ उलट फेर हो, नौकरी जाए, सेहत बिगड़े, कोई रिश्ता टूटे, तो हम याद रख सकते हैं कि घटना अलग है और हमारी प्रतिक्रिया अलग।
हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगा सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, हमारे विचार, हमारे मूल्य, हमारा बर्ताव।
बिल्कुल, ये हमें हालात के थपेड़ों में बह जाने से बचा सकता है।
और दूसरा?
दूसरा, ये हमें कामयाबी और खुशी को दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकती है। रीडिफाइन सक्सेस एंड हैप्पीनेस।
हाँ, मतलब ये सोचना कि क्या कामयाबी सिर्फ पैसा या शोहरत है,
या फिर असली खुशी ईमानदारी से जीने में है, सीखने में है, अच्छे रिश्ते निभाने में है, एक बेहतर इंसान बनने में है।
ये किताब याद दिलाती है कि ये अंदरूनी चीजें ज्यादा टिकाऊ हैं, ज्यादा संतोष देती हैं।
सही कहा। तीसरा, ये नाइंसाफी से निपटने का एक अलग नजरिया देती है।
वो कैसे?
जब लगे कि भाई बुरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे लोग पिस रहे हैं, तो गुस्सा या कड़वाहट पालने के बजाय ये किताब कहती है कि शायद उन पर तरस खाओ।
तरस बुरे लोगों पर?
हाँ, क्योंकि वो अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो असली खुशी से दूर जा रहे हैं। तुम अपना ध्यान अपनी नेकी बनाए रखने पर लगाओ, वही असली जीत है।
ये मानना बहुत मुश्किल है, पर हाँ, सोचने लायक जरूर है।
बिल्कुल। और आखिर में, मुश्किलों में मतलब ढूंढना, फाइंडिंग मीनिंग इन हार्डशिप।
मतलब ये सोचना कि हर मुश्किल एक सबक हो सकती है।
हाँ, ये हमें मौका देती है ये जानने का कि हमारे लिए असल में क्या जरूरी है, हमारी असली ताकत क्या है, हमारे सच्चे साथी कौन हैं।
तो मुश्किल को सिर्फ सजा की तरह नहीं, बल्कि
हाँ,
एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखना।
बिल्कुल, ये नजरिए का फर्क है।
तो इस पूरी चर्चा में आपके लिए सबसे चौंकाने वाली या नई बात क्या थी?
तो मेरे लिए तो वो बुराई को कमजोर मानना, ये सोचना कि जो इंसान बुराई कर रहा है वो असल में ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर है, क्योंकि वो अपने असली मकसद, खुशी या अच्छाई से भटक गया है। ये दुनिया को देखने का बिल्कुल उल्टा नजरिया है।
हाँ, ये वाकई अलग है। और मेरे लिए सबसे खास बात यह है कि कैसे फिलॉसफी को एक प्रैक्टिकल चीज, एक थेरेपी की तरह पेश किया गया है, कि सिर्फ सोच विचार करने से, चीजों को सही तरीके से समझने से सच में सुकून मिल सकता है, हम भावनात्मक रूप से ठीक हो सकते हैं। ये बहुत उम्मीद देती है बात।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
तो अगर एक लाइन में कहें तो सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारी खुशी और शांति काफी हद तक हमारे अंदरूनी नजरिए और समझ पर निर्भर करती है, बाहरी किस्मत पर नहीं।
बिल्कुल, हमारा अपनी भलाई पर जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कंट्रोल है, पर वो कंट्रोल दुनिया बदलने से नहीं, खुद को समझने और सुधारने से आता है।
ये किताब जिंदगी को चीजें हासिल करने और मुसीबतों से बचने की दौड़ की तरह देखने के बजाय उसे सीखने और एक बेहतर इंसान बनने के सफर की तरह देखने का नजरिया देती है।
हाँ, ये दुख को कम नहीं आंकती, पर उसके बीच भी मतलब और विकास की गुंजाइश दिखाती है।
द कॉन्सोलेशन ऑफ फिलॉसफी की यही खूबी है कि ये इतने सालों बाद भी एकदम ताजा लगती है।
बिल्कुल, ये दिखाती है कि सबसे मुश्किल हालात में भी समझ और विवेक के जरिए शांति पाना मुमकिन है। ये दिल और दिमाग दोनों को छूती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।